सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
सातवें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जो सात्विक सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, कौन से सत्गुण से उत्पन्न होने भाव हैं? सम, दम इत्यादि, अहिंसा, श्रद्धा, ये सब सात्विक भाव हैं। भाव मतलब वृत्तियां, हमारे थॉट्स आते हैं, ऐसे भाव होते हैं। फिर कहते हैं जो राजस है रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, जैसे हर्ष, हमने बहुत कुछ काम किया हमको आनंद मिला, या हमको सक्सेस मिल गई हमको दर्प हो गया, हमको अभिमान हो गया, ये राजसिक भाव हुए। या तामसिक भाव हो गए, तामसिक भाव क्या है? शोक मोह। तो भगवान कहते हैं कि ये सब के सब जो हैं प्राणियों के अपने कर्म के अनुसार, ये कुछ जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए जान। तो ये भाव क्यों आते हैं? कर्म के कारण आते हैं। सुख दुख क्यों आता है? कर्म के कारण आता है। जो कुछ भी है वो कर्म के अनुसार आता है। ये जो सात्विक भाव है समदम, वो भी कर्म के अनुसार आते हैं। जब पुण्य होता है तब आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूं, उनका कारण मैं हूं मगर मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनके बस में नहीं हूं, उन भाव के बस में मैं नहीं हूं। ये भाव क्यों आ रहे हैं? सत्व रजस तमस के कारण आ रहे हैं, हमारे कर्म के अनुसार आ रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझमें है। वो मुझमें है मतलब मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूं, मैं उसको वश में ले सकता हूं, मगर ये भाव मेरे को वश में नहीं ले सकते। मेरे को वश में मतलब ये सारे के सारे त्रिगुण का काम है। भगवान तो त्रिगुण से परे हैं। सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव सब तो त्रिगुण के हैं, माया के हैं, और माया से भिन्न है भगवान। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये भाव मेरे को प्रभावित नहीं करते, ये मेरे वश में हैं, मगर जीव उनके वश में है, इन भावों के वश में जीव है। तो ऐसा जो साक्षात परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, तो परमेश्वर कैसे हैं? नित्य हैं। नित्य का मतलब बराबर रहने वाले हैं, उनकी जन्म नहीं है, उनका मृत्यु भी नहीं है, इसलिए नित्य है, शुद्ध है। भगवान ब्रह्मन तो सब शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, अशुद्ध क्या है? अनात्मा अशुद्ध है। बुद्ध है, नॉलेज एब्सोल्यूट वो है। मुक्त स्वभाव के हैं, वो मुक्त है, हम बंधन में हैं। भगवान तो मुक्त हैं, एवं सब भूतों का आत्मा है वो, और गुणों से अतीत हैं, और संसार रूप दोष के बीज को भस्म करने वाला मैं हूं, उसको जगत नहीं पहचानता। देखो भगवान को दुख हो रहा है, भगवान कहते हैं अगर मेरे को जान लो तो संसार का बीज जो है वो खत्म हो जाएगा, संसार से हमें दुख मिलता है, हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान खेद प्रकट करते हैं और जगत का यह अज्ञान किस कारण से है सो बतलाते हैं, क्यों हो रहा है ये। तो 13वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं त्रिभिगुणमयी भावई ए भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना अभिजनाति मावेभ्य परमभ्यम। ये त्रिगुण के कारण है, सत्व रजस तमस जो है त्रिगुण कारण है। और इसने क्या किया है, गुणों के विकार रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों भावों से अर्थात उपयुक्त राग द्वेष और मोह, हम सब में राग द्वेष मोह है, राग द्वेष लाइक्स डिसलाइक्स, मोह डेल्यूशन। मोह क्या है, किसी भी चीज को उसके शुद्ध रूप में न जानना, ये मोह है। हम संसार को जानते हैं ये नित्य है ये स्थाई है, मगर वेदांत कहता है ये संसार क्या है, अस्थाई है मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है मगर हमको लगता है ब्रह्म है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए ब्रह्म नहीं है। तो ये हम लोग की विचारधारा है, ये हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्या है, बोले सब मोह है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सब प्राणी विवेक शून्य हो गए हैं, विवेक शून्य हो गए हैं। अच्छा, अतः इन उपयुक्त गुणों से अतीत विलक्षण अविनाशी विनाश रहित तथा जन्मादि संपूर्ण भावों विकारों से रहित मुझ परमात्मा को नहीं जान पाते। हम सब किस में फंसे हुए हैं, हम लोग नाम रूप में फंसे हुए हैं, जो भी सत्व रजस तमो गुण से बने हैं, और भीतर में जो हमारे भाव आते हैं वो भी सात्विक राजसिक और तामसिक हैं, हम उस वृत्तियों में फंसे हुए हैं। तो भीतर में हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां हैं हम उसको प्रधानता देते हैं, बाहर में जितने भी नाम रूप हैं वो सारे के सारे उनके अंदर हम फंसे हुए हैं, उनको हम जो है महत्व देते हैं। तो ये किससे बने हुए हैं, भगवान ने पहले बता दिया कि भीतर के जितने भी भाव हैं सात्विक राजसिक तामसिक मुझसे बने हैं, और बाहर जो नाम रूप है वो भी मुझसे बने हुए हैं, ये सब मेरे में हैं मगर मैं इनमें नहीं हूं, मैं उनके बस में नहीं हूं, मैं उनकी तरह जन्म लेने वाला मरने वाला नहीं हूं। तो फिर इस देव संबंधिनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को मनुष्य कैसे तरते हैं। अब प्रश्न तो ये है, माया से हम मोहित हो गए, हम सब मोहित हैं, कैसे माया को पार करें, कैसे माया को पार करें। तो ये इस अध्याय का प्राण श्लोक आ रहा है, ये एक नंबर प्राण श्लोक है, एक दूसरा प्राण श्लोक बाद में आएगा, फिर बताएंगे आपको। 14वां श्लोक,
दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।
भगवान कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया कैसी है, देवी है, देवी शक्ति है ये, मेरी शक्ति है, मम माया मेरी माया है ये, और क्या है, गुणमयी है, इसमें गुण है, सत्व रजस तमस तीन गुण हैं। दुरत्या इसको पार करना जो है बहुत मुश्किल है, कठिन है दुरत्या, मगर माम ये प्रपद्यन्ते जो मेरे को मेरी शरण में आते हैं उनको क्या करते हैं, माया में इताम तरंती थे, उनको माया से पार चले जाते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनको माया से पार कर देता हूं, उनकी सहायता करता हूं। अच्छा, क्योंकि ये अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, देखो निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो संसार सागर को पार करने का तरीका क्या हुआ? संसार सागर को पार करने का तरीका हुआ कि हमको भगवान की शरण में जाना होगा और फिर उनको क्या करना होगा? उनका भजन करना होगा। कैसा भजन करना होगा? निरंतर करना होगा। निरंतर का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे 7 दिन जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आपको करना है, ये हुआ निरंतर। तो भगवान है कैसे? भगवान परम है। परम का मतलब क्या हुआ? उनके ऊपर और कोई नहीं है, उसको हम परम कहेंगे, परम है। भगवान अव्ययम है। अव्ययम का मतलब उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता। भगवान कैसे है? भगवान अधिष्ठान है, सारे जगत का वो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है। भगवान विलक्षण है। विलक्षण मतलब यहाँ पर हम संसार में अस्थाई चीजें देखती हैं, जितनी भी चीजें हैं वो इम्परमानेंट है, अस्थाई है। और भगवान कैसे है? उससे डिफरेंट, विलक्षण। विलक्षण मतलब वो स्थाई है, तो भगवान स्थाई हैं। भगवान कैसे? असंस्पृष्ट। असंस्पृष्ट मतलब उसको आप टच नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। अच्छा, भगवान कैसे हैं? भेद रहित हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। हम संसार में हर चीजों में भेद देखते हैं, है? पशुओं में भेद है, पक्षियों में भेद है, मनुष्यों में भेद है। उसके बाद में भगवान कैसे हैं? निरुपाधिक हैं, उनकी कोई उपाधि नहीं है। हम लोग अभी जो बैठे हुए हैं वित्त उपाधि हैं, सब वित्त उपाधि। उपाधि किससे बनी? सत्व रजस तमस से। भगवान कैसे हैं? सत्व रजस तमस के परे हैं, इसलिए उपाधि रहित हैं। भगवान कैसे हैं? हम सब अनित्य हैं, भगवान नित्य हैं। हम सब अशुद्ध हैं, इम्प्योर हैं। क्या इम्प्योरिटी है हमारी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये हमारी अशुद्धता है। भगवान कैसे हैं? शुद्ध हैं। भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध मतलब वो ज्ञानी हैं। हम कैसे हैं? महाज्ञानी हैं, हम सब अज्ञानी हैं। भगवान मुक्त हैं, हम कैसे हैं? हम बंधन में। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है। अच्छा, जो सत्व रजस तामसिक जो वृत्तियां हमारे मन के अंदर में आती हैं, जो उसके प्रकाशक को जान लेता है वो पार कर गया। देखो, हमारे मन के अंदर सात्विक, राजसिक, तामसिक वृत्तियां आती हैं। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सात्विक वृत्ति क्या है, राजसिक वृत्ति क्या है, तामसिक वृत्ति क्या है। इन वृत्तियों के प्रकाशक को जो जान लेता है वो पार कर गया, वो पार कर गया। और बाहर में जितने भी नाम रूप हैं, इसके आधार को जिसने जान लिया, इसके अधिष्ठान को जिसने जान लिया, वो भी पार कर गया। तो इस संसार सागर को पार करने के लिए हमें क्या करना है? हमको भगवान को पहचानना है। भगवान कहाँ है? हमारे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। भीतर कहाँ है? भीतर हमारे मन में है। कहाँ बैठे हुए हैं? वो हर वृत्तियों को प्रकाश देते हैं, इल्यूमिन करते हैं, वो वृत्तियों के प्रकाशक हैं, प्रकाशक हैं। तो अगर हमें उनसे मिलना है तो कहाँ जाना होगा? हमको भीतर जाना होगा, भीतर जाके वृत्तियों तक पहुँचे और वृत्तियों के बाद उनके प्रकाशक तक पहुँच जाएं, बस सीधा यही है। और बाहर अगर आँख खुली होकर देखना है तो नाम रूप को उसको बाधित करके आप देखिए, आपको मिल जाएगा। अब भगवान कहते हैं प्रपद्यन्ते। देखो, प्रपद्यन्ते दो किस्म से हम इसकी व्याख्या करेंगे, एक तो ज्ञान मार्ग से और दूसरा भक्ति मार्ग से। दो मार्ग हैं हम भगवान तक पहुंचने के लिए। तो पहला ज्ञान मार्ग क्या है? जो मेरी शरण में आते हैं। तो यहां पर ये फिजिकल शरण नहीं है। आप ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके हमने भगवान साष्टांग प्रणाम कर दिया आपको, अब हम आपकी शरण में हैं, आप जो है मेरा ले लो भार आप लो। भक्ति मार्ग में वो आएगा। ज्ञान मार्ग के अंदर क्या है कि हमने भगवान का चिंतन किया और त्रिपिटी को भंग कर दिया, त्रिपुर को भंग कर दिया, मतलब मेडिटेटर नहीं है, मेडिटेटिंग नहीं है, क्या रह गया जिसके ऊपर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, केवल वो रह गया, केवल वो रह गया। तो शरणागत भी नहीं है, केवल शरण दाता ही है बस, और कुछ नहीं है, वो दोनों एक हो गए, जीवत्व तो खत्म हो गया। ये प्रपद्यन्ते ज्ञानवाचक हुआ, ज्ञानवाचक, ये एक किस्म का सरेंडर हुआ। दूसरा सरेंडर भक्ति मार्ग के अंदर है, भक्ति के अंदर आप जाके भगवान से आप प्रेम कीजिए। कैसा प्रेम होना चाहिए? जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा, परम प्रेम रूपा होना चाहिए, परम प्रेम, निष्काम प्रेम होना चाहिए। अच्छा, तरंती, देखो ये ऊपर जो आया था ना, अगर आप शरण में चले जाते हो तो क्या होता है भक्ति मार्ग के अंदर, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो है शास्त्रों में आता है, ठाकुर रामकृष्ण भी दिया है कि देखो जब मछुआरा जो है ना जाल फेंकता है ना मछली पकड़ने के लिए, तो जो मछली मछुआरे के पैर के पास होती है वो पकड़ने नहीं आती है, वो जब जाल को फेंकता है फिर उस जाल को टांता है तो जो मछलियां दूर रहती हैं वो सब पकड़ में आ जाती हैं, मगर जो मछली उसके पैर के पास होती है वो नहीं पकड़ में आती है। तो इसी तरह से अगर आप भगवान को अगर आप सरेंडर कर दो, उनके पैर को पकड़ लो, तो फिर क्या होगा, माया आपको नहीं पकड़ पाएगी, आप माया के जाल में नहीं पकड़े जाओगे। तरंती, तरंती का मतलब ज्ञान मार्ग के अंदर इसका अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का नाश कैसे हुआ? विद्या मेरे को मिल गई, विद्या मिल गई, हमको किसी ने ज्ञान बता दिया, शास्त्र ने बता दिया, हमारे गुरु ने बता दिया कि वहां कैसे पहुंचना है, मन में कैसे पहुंच रहा है, बाहर में नाम रूप को कैसे बाधित करना है, ये अगर हमें ज्ञान हो गया तो हम पहुंच जाएंगे। तो नाश हो गया, नाश होने से क्या होता है, तरंती शोक आत्मवित, आत्मवित मतलब जो आत्मवित्ता है, जिसको ज्ञान हो गया शोक खत्म हो गया। हमने कई बार देखा है ये एकदम सत्य बात है, शोक कहाँ से आता है, आत्मा से आता है, शोक अनात्मा से आता है, और अनात्मा को छोड़ के हम आत्मा पहुंच गए। भगवान के पास अगर पहुंच जाएंगे तो अनात्मा को छोड़ने से ही आत्मा तक पहुंचेंगे। आप सोचोगे कि एक हाथ से हम अनात्मा को पकड़ें, दूसरे हाथ से हम आत्मा को पकड़ लें, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, एक बाहर है, एक का आपको जाना है बाहर और दूसरा अंदर बैठा है, तो आप कैसे बाहर अंदर एक साथ कैसे कर सकते हो, कर सकते हो क्या? आपको पूरब में जाना है, पूरब में मान लीजिए इस तरफ में ईस्ट है, इस तरफ में सब संसार है, और भगवान कहाँ है, उसके उल्टी तरफ भीतर में बैठे हुए हैं, तो आप बोलोगे कि मेरे को जो है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा पहुँच रहे हो, ना उधर जा रहे हो ना इधर आ रहे हो, बीच में फंसे हुए हो। तो जब हम अनात्मा को छोड़ते हैं, जो अनात्मा हमको दुख देता है, अगर अनात्मा हमसे छूट गया तो दुख भी छूट गया। इसलिए तरंति शोक आत्मवित एताम माया, तो माया क्या है, त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण है, और ये अनर्थकारी है माया, जितना भी अनर्थ हो रहा है इस माया के कारण हो रहा है, इस त्रिगुण के कारण हो रहा है, इसने सारे जगत को मोहित किया हुआ है। इसे ज्ञान से पार कर सकते हैं, भक्ति से भी कर सकते हैं, भक्ति का मार्ग हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ज्ञान से भी हम पार कर सकते हैं और भक्ति से भी कर सकते हैं। तो सारा जगत उसकी सत्ता से भास रहा है, सारा जगत जो है बाहर में वो सबस्ट्रेटम रूप के है, अधिष्ठान रूप में है, और भीतर में भगवान हमारे मन के अंदर बैठ के सारे वृत्तियों को प्रकाशित करते हैं, तो भीतर बाहर वो सब जगह हैं। मगर परमात्मा का हमें सही ज्ञान नहीं है, मोह के कारण सही ज्ञान नहीं है। देखो एक तो एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसा हमारा हाल है। एक वृत्ति ईर्षा द्वेष की अगर हमारे मन में आ जाए ना, ईर्षा द्वेष की वृत्ति, इसको पार करना कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जन्म जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ईर्षा द्वेष चलती रहती है। आप अगर जाओ वहाँ पर भारत के अंदर कुछ जगह पर देखिएगा तो आप जो है ईर्षा द्वेष, ब्राह्मण ने शूद्र को कुछ किया, शूद्र ने ब्राह्मण को किया, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है ईर्षा चलती रहती है कि हमारे पूर्वजों को इसने मारा था, और या ये सोचता है कि हमारे पूर्वजों को इसने मारा था। तो ईर्षा देखो एक वृत्ति है ईर्षा, मैं इसको पार करना कितना कठिन है, बहुत कठिन है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। और इसी तरह से हमारे में अनेक वृत्ति है, अनेक वृत्ति है। अभिमान एक ऐसी वृत्ति है, रावण को अभिमान हो गया कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सीता जी को लेके आया हूं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उसको पांच लोगों ने समझाया, मगर ऐसा अभिमान था कि उसका अभिमान टूटा ही नहीं। हनुमान जी ने जाके उसको बोला कि तुम सीता जी को वापस कर दो, हम तुम कुछ नहीं करेंगे, तुमको छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ा। उसके छोटे भाई विभीषण ने कहा छोड़ दो, नहीं छोड़ा। उसकी बीबी मंदोदरी ने कहा छोड़ दो, नहीं छोड़ा। लक्ष्मण ने एक नोट भेजा तुम छोड़ दो, अभी भी तुमको लंका का राज मिलेगा रहेगा न। उसके गुप्तचर सुख ने आके खबर दी कि भाई उनके पास जो सेना है उसका एक एक बंदर जो है आपको हरा सकता है, और उनकी सेना है 18 पदम। पदम बहुत बड़ी संख्या होती है, इतने बंदर और भालू है उनके पास। अब फिर वहां यह भी बताया कि उसमें से जो सबसे छोटा बंदर था ना वो लंका आया था, हनुमान के बारे में बता रहे। उनके 18 पदम जो बंदर और भालू की जो सेना है उनमें जो सबसे छोटा बंदर है वो हनुमान के रूप में आया था और सारी लंका को जला के चला गया, तुम्हारे पुत्र को भी मार गया। फिर भी नहीं माना, एक वृत्ति अभिमान। एक एक वृत्ति कैसा मतलब जो है कठिन होता है हटाना। आप दुर्योधन को देखिए, दुर्योधन क्या माना, भगवान कृष्ण गए थे कि हाँ भाई सुलह कर लो, तुम दे दो थोड़ा सा जमीन दे दो, ये कर दो, कुछ नहीं देंगे, एक वृत्ति में फंस गया, आपको सुई भर जमीन भी नहीं देंगे, बस। क्या हुआ उसका, नाश हो गया। जड़ भरत देखो, भरत इतने आगे बढ़े हुए थे साधना के अंदर में, एक हिरण के साथ में मोह हो गया, एक वृत्ति, एक अटैचमेंट। हमारी कितनी अटैचमेंट आप गिन लेना अपने आप, एक दिन सोने के पहले जो है सोच लेना कितनी कितनी जगह मटके हुए हैं। भरत एक वृत्ति के कारण उनको जड़ भरत के हिसाब से जन्म लेना पड़ा। अच्छा, ये माया है क्या चीज, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे या माँ सा माया। माया को अगर उल्टा कर देना माँ या मीन्स स्त्रीलिंग, माया स्त्रीलिंग है, या जो माँ, माँ संस्कृत में ना को कहते हैं, जो नहीं है, जो नहीं है वो माया है, या माँ सा माया, जो सच नहीं है। ये मायावी के जाल की तरह है, आपने जादूगर का जाल देखा होगा ना, ये उसी तरह से है ये। अच्छा, अगर माया अगर सत होती, सत का मतलब क्या, सत का मतलब त्रिकाल में रहने वाली अगर माया अगर सत होती तो हमारे किसी की हिम्मत नहीं होती उसको हटाने की, हम नहीं हटा सकते थे। चूंकि माया सत नहीं है, सत मतलब तीन काल में रहने वाली नहीं है, और माया असत भी नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जगत नहीं है। ये जगत कहां से आया, माया से ही तो बना है, सत्व रजस तमस गुण से बना है, मगर ये जगत जो है अस्थाई है, तीन काल में रहने वाला नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जगत है ही नहीं, असत भी नहीं कह सकते हम इसको। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि अगर ये सत भी नहीं है, ये जगत सत भी नहीं है, अगर ये असत भी नहीं है, तो इसको हम मिथ्या कहेंगे। ये वेदांतिक शब्द है मिथ्या, हमारे हम व्यवहार में जो मिथ्या कहते हैं उसे मत मिलाइएगा उसको। मिथ्या का मतलब ये है कि जो केवल एक लिमिटेड पीरियड में रहता है, एक सीमित काल में रहता है, उसको वेदांत में मिथ्या कहते हैं। तो जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे जो कुछ भी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, जो कुछ भी हो, इन सब का जीवन जो है सीमित है, काल में बंधा हुआ है। उसके पहले, सृष्टि के पहले ये नहीं थे और प्रलय के बाद ये नहीं रहेंगे। सबका जो है एक सीमा बंधी हुई है, काल की सीमा बंधी हुई है, इसलिए ये सारा का सारा मिथ्या है। अगर ये सत्य होता, त्रिकाल सत्य होता, तो हम इसे नहीं हटा सकते थे, जगत को हटाना बहुत मुश्किल होता। अच्छा, दूसरा, अज्ञान ही माया है, अज्ञान इग्नोरेंस ही माया है, और ये अज्ञान बहुत बलवान है, माया बहुत बलवान है। क्या करती है? अघटित घटना पटी ऐसी, जो घटना घटी नहीं वो दिखा देती है, अघटित घटना पटी से दिखा देती है। रेगिस्तान में पानी नहीं है मगर पानी दिखा देती है, मिराज वाटर नजर आता है ना, अघटित घटना पटी ऐसी, जो घटना घटी नहीं उसको दिखा देती है। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ये जागृति मिथ्या है। देखो, स्वप्न सत्य है कि नहीं या मिथ्या है, ये आप सबका अनुभव है, हमारा सबका अनुभव है ऐसा है। मगर जब हम स्वप्न में रहते हैं तब वो सच लगता है। जब स्वप्न में हम रहते हैं तब उस काल में वो स्वप्न हमको सच लगता है। मगर जब हम उस स्वप्न अवस्था से निकल के जागृत अवस्था में आते हैं तब हम कहते हैं कि स्वप्न मिथ्या है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं जागृत भी मिथ्या है, जागृति मिथ्या है, मगर इनकी रियलिटी की डिग्री डिफरेंट है। देखो, रियलिटी की डिग्री डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? स्वप्न के अंदर बुद्धि नहीं होती, जागृत में बुद्धि है। स्वप्न के अंदर बुद्धि नहीं रहती, वो सारे मन का खेल है, वहां बुद्धि काम नहीं करती है। आपने मॉल में गए, मॉल में आपने एक मेम साहब देखी, स्कर्ट पहनी हुई थी, हाई हील पहनी हुई थी, आपने रास्ते में एक हाथी भी देखा है, उसके बाद में फिर आप देखते हैं स्वप्न के अंदर में कि एक हाथी स्कर्ट पहन के, हाई हील पहन के आपके घर का डोरबेल बजा रहा है। बुद्धि बुद्धि नहीं वहाँ है उस टाइम में, केवल ये मन की कल्पना चलती है। तो स्वप्न के अंदर बुद्धि नहीं रहती है, जागृत में बुद्धि है, इसलिए डिग्री ऑफ रियलिटी डिफरेंट है, मगर दोनों ही इल्यूशन है। जैसे स्वप्न मिथ्या है वैसे जागृत भी मिथ्या है। अच्छा, माया की एक डिफिनेशन हमें रामायण में भी मिलती है, जब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा माया क्या है, 5 प्रश्न पूछे थे जिसमें एक प्रश्न था माया क्या है, और उन्होंने एक सेंटेंस में कह दिया, मैं और मोर तोड़ते माया, बस मैं, आई ईगो, मेरा, तू और तेरा, बोले ये है माया, बस इतना ही माया है, इसको खत्म कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो जो भगवान को समर्पण करते हैं उनकी माया भगवान खत्म कर देते हैं, क्योंकि माया के पति भगवान है, माया के पति भगवान है, जिसके अंडर में है, जिसके कंट्रोल में है, अगर उसको जाके हम रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारी माया खत्म कर दो, कर देगा? कैसे होता है ये? एक जादूगर है, अब आप लोगों तो मैजिक वगैरह देखा होगा, मैजिशियन होता है, एक उसका असिस्टेंट होता है, मैजिशियन को असिस्ट करने वाला। वो असिस्टेंट ने क्या किया है, उसने मैजिशियन को सरेंडर किया है, उसने चूंकि सरेंडर कर दिया है, इस वास्ते वो जो जादूगर जो जादू दिखाता है उससे उसका असिस्टेंट प्रभावित नहीं होता है, बाकी सारे दर्शक प्रभावित हो जाएंगे। जादूगर का असिस्टेंट जिसने जादूगर को समर्पित कर दिया है वो जादूगर के खेल से प्रभावित नहीं होता है, सारे दर्शक प्रभावित होते हैं। ठीक उसी तरह से माया के पति के पास में हम जाके अगर कहें कि मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आप मेरी रक्षा करो, तो आप निश्चिंत हो सकते हो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा, माया के अन्य नाम भी आपको कुछ बता दें, बहुत नाम आपको शास्त्र में मिलते हैं, कंफ्यूजन आप लोग को ना हो। तो एक नाम माया का है अविद्या, इग्नोरेंस। प्रकृति, ये भी आपने सुना है। माया, ये वर्ड भी आपने सुना है। तम, तम मतलब अंधकार, तम अज्ञान, ये भी आप जानते हैं। अज अनृतम, अज मीन्स अनबोर्न, अनृतम मतलब जो सत्य नहीं है, अज अनृतम। प्रधान, प्रधान भी कहते हैं। प्रधान किसको कहते हैं? अनमैनिफेस्ट प्रकृति को प्रधान कहते हैं। जब वो मैनिफेस्ट कर जाती है, जब व्यक्त होती है, तब उसको हम प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त अवस्था में उसको हम प्रधान कहेंगे। जैसे आज सूबी जी अभी क्या हैं? अव्यक्त हैं। चाह के भी व्यक्त नहीं हो पा रही हैं। तो वो स्टेट क्या है? उस स्टेट को हम प्रधान कहेंगे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब व्यक्त हैं। तो आप लोग क्या हुए? आप प्रकृति हुए। प्रकृति के माया कैसी है? उसको जड़ भी कहते हैं। एक जड़ एक चेतन हुआ ना, तो माया जड़ है। सहिष्णु, सहिष्णु मतलब जो जो बदलती है, है? जो बदलती है उसको सहिष्णु भी कहते हैं। त्रिगुणात्मकम, त्रिगुणात्मकम त्रिगुण को भी माया ही है। अचेतन, एक चेतन है एक अचेतन है, अचेतन माया है। असत, जो सत नहीं है, असत भी हम माया के लिए व्यवहार करते हैं। तथा सर्व अशुभ आस पदम, सारे अशुभ का ये घर है, जितने भी अशुभ होते हैं सारे अशुभ का ये है। तो संसार से पार जाने के लिए हमको क्या करना है? मायापति की शरण में जाना है। संसार से पार करना है तो मायापति के पास में जाना होगा। अच्छा, अब कुछ प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे, साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा। माया किसके आश्रय में है? तो देवी माया है, चेतन के आश्रय में है, भगवान के आश्रय में है, भगवान के आश्रय में। तत्वबोध में भी हमने पढ़ा ब्रह्माश्रय माया, ब्रह्म के कंट्रोल के अंदर माया है। माया का विषय क्या है? माया का विषय ये है कि ये ब्रह्म को ढक देती है। हमारे भीतर में जो आत्म तत्व है या बाहर में जो अधिष्ठान के अंदर जो ब्रह्म है उसको वो ढक देती है। ब्रह्म पर आश्रित है और ब्रह्म को ही ढक देती है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि जैसे सूर्य के कारण बादल बनते हैं, अगर सूर्य ना हो तो बादल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। किसको बादल ढकता है? सूर्य को ढक देता है। देखा, ठीक माया उसी तरह से क्या करती है? वो जो है भगवान को ढक देती है हमारे भीतर। अच्छा, माया का प्रमाण क्या है? माया का प्रमाण ऐसा, ऐसा वर्ड जो है जो कि विदित नहीं है, अविद्या रूप है। माया क्या है? अविद्या रूप है। और ये हमारा सबका अनुभव है। तो प्रमाण हम लोग हैं, हम लोग ही प्रमाण है कि माया ने हमको मोहित किया, हम आत्मा को नहीं जानते हैं। इसका प्रमाण और कौन दे सकता है? क्या आप जानते हैं आत्मा को? नहीं जानते हैं। और किसका प्रमाण चाहिए? मेरा अपना अनुभव है कि मैं आत्मा को नहीं जानता हूं। माया का रूप क्या है? माया का रूप है गुणमयी। इसके तीन गुण हैं। गुण का एक मतलब होता है रस्सी। रस्सी क्या काम में आती है? बांधने के काम में आती है। तो ये गुण क्या करते हैं? हमको बांधते हैं। अच्छा, तो ये कैसी है? दुरत्या, बड़ी सख्त है, बड़ी कठिन है। अच्छा, माया किसके अधीन है? मम माया, भगवान के अधीन है मम माया। माया की शक्ति क्या है? देखो, माया की शक्ति तीन है, आपने पढ़ा होगा। एक आवरण शक्ति है, तमोगुण। एक विक्षेप शक्ति है, रजोगुण। तीसरी एक शक्ति है, विवेक शक्ति है, वो सत्वगुण है। तो माया के अंदर ही बांधने की शक्ति है और निकलने की शक्ति है। कौन शक्ति बांधती है? रजोगुण तमोगुण बांधता है। पहले तमोगुण जो है वो ज्ञान को ढक देता है, वस्तु को ढक देता है, और उसकी जगह फिर विक्षेप शक्ति बोलती है क्या है? अरे आत्मा तो नहीं है, तो क्या है? देह है। आप कौन हो? आप देह हो। आप आत्मा नहीं हो, ये भी छिप सकती है। अब उसके अगर आप सत्वगुण तक आ जाएं, तो आपकी विवेक शक्ति आ जाएगी, विवेक शक्ति से आपको आत्मा और अनात्मा का विवेक करना होगा। आत्मा अनात्मा का अगर विवेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आत्मा कौन है अनात्मा कौन है। तो रजोगुण तमोगुण बांधते हैं, और हर जीव क्या है, हर जीव जो है रजोगुण तमोगुण प्रधान है, हमारे में सत्वगुण बहुत कम है। तो हमें क्या करना होगा, सत्वगुण बढ़ाना है। सत्वगुण बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, रजोगुण तमोगुण को दबाना पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाओगे तब सत्वगुण बढ़ेगा। तीनों गुण एक साथ रहते हैं, उसका नाम है जोग माया, मगर इनके प्रोपोर्शन चेंज होते हैं और चेंज किए जा सकते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा नित्य सत्वस्थ भवा अर्जुन, तो अर्जुन तुम सत्वगुण के अंदर बराबर रहो। एक बार सत्वगुण में हम पहुंच गए उसके बाद में भगवान काम करेंगे। जैसे हम नींद के पहले सारी व्यवस्था हम करते हैं, मगर नींद हमारे हाथ में नहीं होती। अगर नींद हमारे हाथ में होती तो हमें टैबलेट नहीं खानी पड़ती। नींद हमारे हाथ में नहीं होती है, नींद की हम व्यवस्था सारी कर सकते हैं। नींद किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। उसी तरह से हमको जो क्या करना है, हमको सत्वगुण तक पहुंचना है, उसके बाद सत्वगुण के बाहर ले जाना भगवान का काम है। सत्वगुण तक हमें पहुंचना है। हम अभी किस अवस्था में, रजोगुण तमोगुण प्रधान अवस्था में है। प्रयास से, एफर्ट से, प्रयत्न से हमको जो है आस्ते आस्ते रजोगुण तमोगुण से हटके हमको सत्वगुण तक पहुंचना है, ये हमारा काम है। तो माया पार करने का उपाय क्या हुआ, एक तो ज्ञान मार्ग हुआ, जो शरण में आते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और उसमें निष्ठ हो जाते हैं, उसमें अबाइड करते हैं, उसमें निष्ठा उनकी हो गई, तो क्या हुआ, वो भगवान से एक रूप हो गए। एक रूप मतलब भगवान की आत्मा और ज्ञानी की आत्मा एक है। हम लोगों ने वेदांत में भी देखा ना, तत्वमसी, चेतन की दृष्टि से हम सब एक हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, भगवान उनका भार लेते हैं। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेसा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। ऐसे भक्त का जो निरंतर मेरा भजन करता है, निरंतर इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, निरंतर जो भजन करता है उसका भार भगवान लेते हैं। किस चीज का भार, मृत्यु संसार सागर से उठाने का, इस संसार से निकालने का काम उनका है। अच्छा, तो वो भगवान क्या प्रबंध करते हैं कि आपकी अविद्या हटाने का वो व्यवस्था कर देंगे, अविद्या हटाने की व्यवस्था कर देंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसे भक्तों के लिए हम क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम, ददामी बुद्धि योगम। 10वें अध्याय में भगवान ने ऐसा कह दिया कि हम उसको बुद्धि का व्यवस्था कर देते हैं, उसको ज्ञान की व्यवस्था कर देते हैं। तो ज्ञान कैसे हो सकता है, दो किस्म से हो सकता है। एक तो भीतर बैठे बैठे भगवान आपको अपना स्वरूप बता दें, ऐसा भी हो सकता है, और या बाहर में आपको किसी के थ्रू समझा दें कि भई आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको ज्ञान मिलेगा, ये बता सकते हैं। तो दो किस्म से भगवान आपको ज्ञान दे सकते हैं, एक भीतर से दे सकते हैं और दूसरा बाहर से। बाहर से आपको बोल देंगे कहाँ आपको ज्ञान मिलेगा, कौन आपको ज्ञान देगा, आपका गुरु कौन होगा, ये सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। गुरु और शिष्य का मिलन हमने भागवत में देखा है कि ये सारा का सारा डिपार्टमेंट भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। जब भगवान कृष्ण यहाँ से इस धराधाम से जब चलने लगे तो उद्धव को बुलाया, उद्धव को बुला के उसको ज्ञान दे दिया उद्धव को, और उसके बाद में कहा कि अभी विदुर आएंगे तुम्हारे पास में, विदुर आएंगे तो तुम जो है तुमसे ज्ञान मांगेंगे, तुम ज्ञान देना मत उसको, और उसको बोल देना कि तुमको मैत्री ज्ञान देंगे, मैत्री ऋषि के पास में जाओ वो तुमको ज्ञान देंगे। देखो किसने ठीक किया, भगवान ने ठीक कर दिया। उद्धव को किसको किसने दिया, भगवान ने सीधा दे दिया, और भगवान ने यह भी बता दिया कि तुम्हारे पास कौन आने वाला है और उसका गुरु कौन है। तो ये हमको ख्याल में रखना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुरु और शिष्य का जो है वो मिलन जो है वो भगवान के ऊपर में निर्भर करता है। अब हमारे पास में दो जो है चॉइस है, क्या क्या चॉइस है? अगर माया की शरण में जाओगे तो मोहित रहोगे, नंबर वन, और अगर भगवान की शरण में जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। आपको चूज करना है कहाँ जाना है। आप माया की शरण में रहोगे तो मोहित रहोगे, माया की शरण मतलब जगत में रहोगे, जगत में अटैच रहोगे। जगत कहाँ से कहाँ तक है? आपके मन की वृत्ति से लेके ब्रह्मांड तक जगत है। अगर इस जगत के साथ में तादात्म्य रखेंगे हम तो हम मोहित रहेंगे, और इस जगत से विलक्षण डिफरेंट भगवान हैं अगर उससे हम तादात्म्य करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए वो आप निर्णय करके आप तादात्म्य कीजिए। आपको तादात्म्य हमने अभी तो संसार से, जगत से, अनात्मा से तादात्म्य किया हुआ है, इसलिए हम मोहित हैं। और अब जो है अगर अपना तादात्म्य को घुमा के भगवान की तरफ ले जाएं तो हम मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट,
नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया परितज्ञानाः, आसुरं भावमाश्रिताः, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया परितज्ञानाः, आसुरं भावमाश्रिताः।
यहाँ शंकराचार्य जी लिखते हैं, यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस माया से तर जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण में क्यों नहीं लेते? देखो है ना, अच्छा प्रश्न है ना। हमने आपको दो चॉइस अभी बताई ना, अगर आप माया के साथ में दोस्ती करोगे तो आप मोहित रहोगे, और आप भगवान की शरण में जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। अब प्रश्न होता है लोग क्यों नहीं जाते हैं? अगर हम भगवान की तरफ जाएं, मुक्त हो जाएं, तो लोग जाते क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, माया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया ने आपकी बुद्धि को ढक दिया। बुद्धि को ढक दिया मतलब आपको ज्ञान नहीं है कि आप भगवान हो, आप ब्राह्मण हो, आप आत्मा हो। किसने किया ये? माया ने कर दिया। ऐसे आसुर स्वभाव के धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। तो भगवान कहते हैं दुष्कृतिनः, दुष्कृतिनः मतलब जो पाप कर्मी हैं, जो पापाचार्य करते हैं, जो पापाचार्य हैं, ये लोग भगवान की शरण में कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाएंगे ये लोग। अच्छा, और नहीं ये भगवान की भक्ति करते हैं। जो पापाचारी हैं, जो पाप कर्म करते हैं, वो न तो भगवान की शरण में जाते हैं और न ही भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं। ये पापाचारी कैसे हैं? देखो आप अगर रोज़ शाम को न्यूज़ सुनो ना शिकागो की, तो कुछ न कुछ आपको डाउनटाउन के अंदर कुछ कहीं कहीं शूटिंग हो रहा है, कहीं लूटिंग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, रोज़ एक ना एक कुछ ना कुछ खबर लगी रहती है। ये है दुष्कृतिनः। तो ऐसे लोग न भगवान की भक्ति करेंगे और न ही भगवान की शरण में जाएंगे। तो भगवान कहते हैं चार किस्म के ये दुष्कृतिनः है, पाप कर्मी करने वाले चार किस्म के लोग हैं। कौन कौन है? एक तो है मूढ़ा, दूसरा है नराधमा, तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, और चौथा है आसुरम भाव आश्रिता। ये चार किस्म के लोग भगवान की शरण में नहीं जाएंगे और न ही भक्ति करेंगे। अच्छा, अब एक एक करके हम देखते हैं। मूढ़ा दुष्कृतन माम न प्रपद्यन्ते। मूढ़ा दुष्कृतन दुष्कर्मी, ये जो है भगवान के पास में नहीं जाते। मूढ़ा कौन है? मत स्वरूप ज्ञान शून्य, इन्हें ब्रह्म और आत्मा या सच्चिदानंद का ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो वेदांत नहीं सुनते हैं। वेदांत सुनने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा कहते हैं। अच्छा, क्यों नहीं सुनने आते हैं? देखो, सुन लो इसको, क्योंकि पाप प्रतिबंध है। पाप जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आने के लिए। उसने पाप कर्म पीछे बहुत किए हुए हैं, जिसका फल के लिए वो वेदांत की तरफ नहीं आएगा, भगवान की तरफ नहीं आएगा। उसका पाप प्रतिबंध है, यही उसका कारण है। ऐसे लोग को मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो, मूढ़ा, मूढ़ा कौन है? जिनको भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई रुचि भी नहीं है इनकी। क्यों नहीं रुचि हो रही है, क्या कारण है? पाप जो है प्रतिबंध है, पाप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ऐसे लोग को मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी, खत्म, उनकी गति जीरो, उनको फिर से वापस आना है। दूसरा, नराधमा दुष्कृतन है माम न प्रपद्यन्ते। नराधमा सत्यम अपि स्वरूप ज्ञाने मद अमुख्यम शून्य। इनको ज्ञान है मगर इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। घर में स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है खाली, सारी उपनिषद की किताबें, गीता, सब किताबें उनके घर में लाइब्रेरी में आपको मिलेंगी। आप जाओगे तो मालूम होगा, अरे बाप रे भाई, कितने धार्मिक आदमी है ये, हैं? दुनिया भर की लाइब्रेरी सब कुछ में पड़ी हुई है, मगर पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है। ऐसे लोग बाल विहार में बच्चों को लेके आएंगे, बच्चों को गेट पर छोड़ेंगे और वापस चले जाएंगे। बूढ़े माँ बाप को लेकर आएंगे, सत्संग में ड्रॉप करेंगे, वापस चले जाएंगे। क्यों? पाप प्रतिबंध है, उनके पास भी पाप लगा हुआ है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है पाप है। अच्छा, तीसरे किस्म के लोग कैसे हैं? माया अपहृत ज्ञाना दुष्कृतन है माम न प्रपद्यन्ते। तो ये क्या कहते हैं? इन्होंने गुरु से ज्ञान पाया मगर इसका ज्ञान जो है माया ने चुरा लिया। माया ने चुरा लिया मतलब क्या है? ये कुतर्क दुस्तर्क करते हैं। अरे गीता पढ़ा रहे हैं, ये 5400 साल पहले हो रहा था, अभी भी लोग पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं वो बेवकूफ है। वो क्या अभी चालू है, अभी लागू है? कितना बदलाव हो गया, इतना सब बदल गया है, अभी भी पढ़ते हैं लोग। कुतर्क दुस्तर्क। तो युक्ति से काट देते हैं, इनमें श्रद्धा नहीं है, मन में शुद्धि नहीं है, माया इनके लिए बहुत प्रबल है, माया प्रबल है, इनकी भी मुक्ति नहीं होगी। तो तीन किस्म के लोग हमने देख लिया, मूढ़ा, नराधमा और माया अपहृत ज्ञाना, जिनको ज्ञान मिल रहा है मगर वो कुतर्क से फिर अपनी युक्ति लगाते हैं उसमें, उनको भी नहीं मिलेगा। और आसुरम भाव आश्रिता दुष्कृत न माम न प्रपद्यन्ते, जिनका स्वभाव आसुरी है वो असुर हैं, जिनके हृदय कठोर हैं, क्रोध दंभ लोभ आदि है, इनका मन अशुद्ध है, ये कहीं भी लड़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। ये आसुरी वृत्ति क्या क्या है तो हमने 16वें अध्याय में भगवान कहेंगे। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये 6 चीजें भगवान ने बता दी कि ये सब आसुरी हैं। एक लाइन में अगर हम कहते बिना सत्कर्म के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, एक लाइन लिख कर रख दो, बिना सत्कर्म के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आप अगर कोई दुष्कर्म करता है तो वो पाप है, आगे किया है वो भी पाप है, वो उसको बराबर भगवान की तरफ जाने में बाधा देगा, बराबर बाधा देगा। अच्छा, तो ये चार किस्म के लोग जो हैं भगवान की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा देखो, इस श्लोक में अर्जुन का नाम नहीं भगवान ने लिया है, इसका मतलब है अर्जुन इस कैटेगरी में नहीं है। आप एक एक श्लोक में देखेंगे भगवान अर्जुन का नाम ले लेते हैं, इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन का नाम नहीं दिया। सारांश इसका क्या करेंगे इस श्लोक का, तो अज्ञान है, अज्ञान हमको क्या करता है, बहिर्मुखी कर देता है, जगत की तरफ ले जाता है। जगत की तरफ जाके क्या करते हैं, ओवर इंडल्जेंस हो जाता है, इंद्रियां और इंद्रिय विषयों के अंदर हम घूमते रमते रह जाते हैं, फिर हमने गंदे काम कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, और उसके बाद में हम वी बिकम नराधमा। अच्छा, तो ये तो नर अधम हो गया। नर उत्तम कौन है, नर उत्तम या नरोत्तम? तो नर उत्तम वो होगा जिसको ज्ञान में रुचि है, मन शुद्ध है, शास्त्र का श्रवण मनन करते हैं, और मन शुद्ध करने के लिए जप पूजन तीर्थ भ्रमण आदि ये सब करते हैं, हैं? उपासना करते हैं, तो ये सब नरोत्तम है, नरोत्तम है। तो इनका क्या होता है भगवान? तो भगवान कहते हैं अभी तुमने दुष्कृतन की चर्चा की, अब सुकृतन की चर्चा करते हैं। तो चार किस्म के उन्होंने बताए दुष्कृतन, अभी भगवान चार किस्म के सुकृतन बताएंगे।
चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
चतुर्विधा भजन्ते माम, चार किस्म के लोग हैं, ये पुण्यकारी हैं, ये भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, ये कौन है? आर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। आर्थ कौन है? तो आर्थ जो है उपद्रव ग्रस्त आर्थ, जिसको पीड़ा है, दुख है, समस्या है, कठिनाई है, तो क्या करता है, भगवान की तरफ जाता है। हम सब यही करते हैं, जब दुख आता है तब मंदिर दौड़ते हैं, आर्त। अच्छा, ये इनका दुख कैसा है, इनके पास धन है, इनके पास धन है, मगर इनकी समस्या ऐसी है कि वो धन से नहीं ठीक होगी। धन है इनके पास में, मगर समस्या जो है वो धन से ठीक होने वाली नहीं है, इसलिए समाधान के लिए वो भगवान के पास जाते हैं, ऐसा दुख है। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी के पास धन था, पांच परिक्रमी पति भी थे, फिर भी आर्त थी, भगवान को बुलाया। या गजेंद्र आर्त था, गजेंद्र के पास अपना बल था, मगर अपना बल में सामर्थ्य नहीं था, भगवान को बुलाया। कुंती दुख की प्रार्थना की ताकि भगवान को पा सके, दुख की प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे को दुख दो ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं। जिज्ञासु, भगवतम तत्त्वम ज्ञातुम इच्छति यह, इसमें तत्व जानने की इच्छा है, तो ये क्यों जाता है भाई भगवान के पास में? ये दो चीजों के लिए भगवान के पास जाता है, भगवान मेरा मन शुद्ध कर दो और मेरे को एक गुरु मिला दो। इसको ये मालूम है जिज्ञासु को कि भगवान जो है गुरु की सप्लाई भगवान ही देते हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को गुरु मिला दो और मेरा मन शुद्ध कर दो। जैसे जनक, उद्धव, ये सब भगवान की शरण में जाते हैं कि हमें ज्ञान दीजिए। बुद्ध भगवान बुद्ध भी संसार में बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, मगर वो सात्विक थे। उनकी अगर आप लाइफ पढ़ो तो देखो कि वो सात्विक, उनका बराबर सारा जीवन सात्विक रहा है। इस वास्ते वो सब को छोड़ के वहां से दुख के सागर से कैसे निकला जाए उसकी चेष्टा के अंदर में वो लगे रहे और उन्होंने प्राप्त भी किया। अर्थार्थी, अर्थार्थी कौन है? धन कामा, धन की कामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। क्लासिक एग्जाम्पल है ध्रुव का, ध्रुव लोक चाहिए उसको, ध्रुव लोक, उसकी कहानी में हम जाएंगे नहीं, ध्रुव लोक के चाहिए, अर्थार्थी। और ज्ञानी विष्णु तत्वता या तत्व ज्ञानी है, कोई कामना नहीं है, निष्काम है, वह कृतकृत्य है, फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है। तो इन चार का विभाजन हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ तो सकामी है और दूसरे निष्कामी है। तो सकामी कौन कौन से हुए? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, एक कामना से जा रहे हैं। आर्थ जा रहा है मेरा दुख दूर करो, जिज्ञासु जा रहा है कि मेरा मन शुद्ध करो, मेरे को गुरु की प्राप्ति हो, अर्थार्थी जा रहा है मेरे को धन चाहिए, ये सब हुए सकामी भक्त। और दूसरा निष्कामी, निष्कामी मतलब ज्ञानी भक्त। तो दो मार्ग हैं आपको हमने आगे भी बताया, एक मार्ग जाता है संसार की तरफ, दूसरा मार्ग जाता है भगवान की तरफ। अगर आपके पास में पुण्य है तब आप भगवान की तरफ जा पाओगे, अगर आपके पास में पुण्य की पूंजी नहीं है तो आप अभी भी संसार में ही रमन करोगे। ये इसके पीछे का विज्ञान है। कई बार लोगों को चिंता होती है लोग क्यों नहीं आते हैं यहाँ पर वेदांत पढ़ने, ये कारण है, ये कारण है इसका। अच्छा, ज्ञान से क्या होता है? चित्त शुद्धि होती है। नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से मन की शुद्धि होती है। और मन शुद्ध हो गया, एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया, भक्ति अपने आप होगी, अपने आप हो जाएगी भक्ति। शंकराचार्य जी वेदांतिन थे मगर उनके अंदर भक्ति, बहुत भक्ति थी। कितने ही मंदिरों की उन्होंने पूजा नियम विधि वगैरह स्तोत्रम वगैरह सब लिख डाला कि आपको ऐसे करना है, और आज तक वो लोग सब उस नियम को पालन करते हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ करते हैं ऐसा। तो दो तरीके हैं, या तो भक्ति पहले करो फिर भगवान का ज्ञान हो जाएगा, या पहले भगवान का ज्ञान हो जाएगा फिर पता लगेगा अरे ये तो सारा संसार उन्हीं का, वही तो नियामक है, फिर उनके प्रति भक्ति तो ऑटोमेटिक होनी है, फिर स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हम लोग के स्कूल के अंदर जो मास्टर आते थे तो हम लोग पहले तो सिखाते हैं ना बच्चों के, खड़े हो जाओ मास्टर जी आए हैं उनका सम्मान करो, तो करते 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 ऐसा एक अब हम लोग का भाव आ जाता है कि कोई भी गुरुजन आ जाए तो हम लोग सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। भगवान के लिए हम क्या भक्ति नहीं होगी? अवश्य हो जाएगी, निश्चित रूप से होगी। अच्छा, दूसरे तरीके से भी हम भक्त का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक ज्ञान रहित निष्काम भक्त हो सकता है और दूसरा ज्ञान सहित निष्काम भक्त हो सकता है। ज्ञान रहित निष्काम भक्त और दूसरा ज्ञान सहित निष्काम भक्त। तो ज्ञान रहित निष्काम भक्त कौन है? यथा गोपिका ब्रज नाम, ज्ञान नहीं है पर भक्ति है, प्रेम है, प्रेम है, तो उनका कौन उद्धार करेंगे? तेसाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरत, भगवान करेंगे, उनका काम है, हमारा काम भक्ति करना है बस, दैट्स ऑल। गोपी ज्ञान नहीं चाहती है, मीराबाई के पास भी ज्ञान नहीं था, भक्त थी। ऐसे भक्तों की व्यवस्था सब भगवान करते हैं। और ज्ञान सहित निष्काम भक्त कौन है? भक्त ज्ञान के पश्चात भी निष्काम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं ज्ञान के पश्चात। बहुत से संत साधु हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और सेवा कर रहे हैं। दूर नहीं आपको जाना होगा, चिन्हय मिशन के जितने भी स्वामी ब्रह्मचारी है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसके बाद वो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, तो ये निष्काम भक्त हो गए। ज्ञान के पश्चात ज्ञान सहित निष्काम भक्त, और एक होता है ज्ञान रहित। ज्ञान रहित, हमको ज्ञान समझ में नहीं आता, इतनी हमारी बुद्धि नहीं है, हम भगवान की खाली भक्ति करते जाएंगे, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, भगवान उसके बाद हमारा सब कुछ देखेंगे, हमारा भार लेंगे। अब ये चार किस्म के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो भगवान बताएंगे कौन सर्वश्रेष्ठ है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी के अंदर में सभी भक्त हैं, सभी भक्त हैं, मगर श्रेष्ठ उसमें कौन है भगवान आगे बताएंगे, तो हम अगली कक्षा में उसको देखेंगे। ॐ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।